ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विधान महाधिवेशन में प्रस्तुत होने वाले प्रतिवेदनों पर नेकपा एमाले के पॉलिट ब्यूरो में विमर्श हुआ शुरू। काठमांडू के कलंकी महाराजगंज चक्रपथ सड़क खंड विस्तार का काम आगे बढ़ा है। भौतिक पूर्वाधार मंत्री दाहाल ने दी जानकारी। और भारतीय राज्य बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 17 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। नेकपा एमाले की पॉलिट ब्यूरो बैठक में विधान महाधिवेशन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदनों के संबंध में विचार विमर्श हुआ। ललितपुर के चैसल स्थित एमाले पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में बैठक हुई। ये जानकारी एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम ने दी। एमाले के विधान महाधिवेशन की पूर्व तैयारी के क्रम में कल हुई सचिवालय बैठक में पार्टी अध्यक्ष ओली के राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पोडल के विधान संशोधन प्रतिवेदन और महासचिव शंकर पोखरेल के सांगठनिक प्रतिवेदन के प्रस्ताव पारित किए थे। पॉलिट ब्यूरो बैठक द्वारा वे प्रतिवेदन अनुमोदित होने के बाद इसी सावन के 5 कते सोमवार को होने वाली केंद्रीय कमेटी बैठक द्वारा उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि एमाले का दूसरा विधान महाधिवेशन आगामी भाद्र 20, 21 और 22 कते को ललितपुर की गोदावरी में होगा। पॉलिट ब्यूरो की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे के लिए पुनः बुलाई गई है। नेकपा राष्ट्रीय एकता अभियान के संयोजक वामदेव गौतम नेकपा एकीकृत समाजवादी में समाहित हुए हैं। राष्ट्रीय सभा गृह में आज आयोजित एकता सभा में अभियान के संयोजक गौतम सहित संपूर्ण कमेटी समाहित हुई। कार्यक्रम में नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल और सम्मानित नेता झलनाथ खनाल ने गौतम का पार्टी में स्वागत किया था। बता दें कि विक्रम संवत 2077 में तत्कालीन नेकपा एमाले से अलग हुई दोनों ही पार्टियां अलग अलग राजनीतिक गतिविधियां संचालित करती आ रही थीं। प्रतिनिधि सभा की पूर्वाधार विकास समिति में काठमांडू चक्रपथ अंतर्गत कलंकी महाराजगंज सड़क खंड के विस्तार की प्रगति के संबंध में विचार विमर्श हुआ। समिति की आज की बैठक में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल ने बताया कि चक्रपथ के उस खंड के विस्तार का डीपीआर तैयार होकर काम आगे बढ़ चुका है। ये बताते हुए कि काठमांडू घाटी में सड़क जाम को कम करने के लिए सरकार नए विकल्पों के बारे में विचार कर रही है। मंत्री दाहाल ने बताया कि सड़क स्तरोन्नति के दौरान वे ही चीजें तोड़ी जाएंगी जिन्हें बनाया जा सके। बैठक में सांसदों ने सड़क के गड्ढे कीचड़ लगाकर समस्याओं के समाधान करने की बात पर जोर दिया था। नेपाल सरकार और दक्षिण कोरिया सरकार के बीच बर्दिया जिले में समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना आईआरडीपी क्रियान्वयन के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। आज अर्थ मंत्रालय में एक कार्यक्रम के बीच मंत्रालय के सचिव घनश्याम उपाध्याय और नेपाल के लिए कोरियाई राजदूत पार्क तई यंग ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि परियोजना के लिए कोरिया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नियोग कोइका के जरिए कोरिया सरकार 80 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद मुहैया कराएगी। बर्दिया के 8 स्थानीय तहों में संचालित होने वाली परियोजना सन 2029 में पूरी होगी। मौके पर अर्थ सचिव उपाध्याय ने विश्वास जताया कि इस परियोजना से स्थानीय सरकार और समुदाय के सशक्तिकरण और समावेशी एवं आर्थिक रूप से सबल समाज निर्माण में मदद मिलेगी। मध्येश के सभी 8 जिलों में सूखा के कारण धान की रोपाई से वहां की जमीनें वंचित रहने के बाद कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय मध्येश प्रदेश के सभी 8 जिलों में टोली भेजने की तैयारी में है। मौजूदा समस्या के समाधान के लिए किए जा सकने वाले तत्कालीन और दीर्घकालीन उपायों और विकल्पों पर अध्ययन के लिए कृषि प्राविधिकों की टोली भेजने का फैसला मंत्रालय ने लिया है। बता दें कि मॉनसून के मौजूदा समय में भी बारिश न होने से पेयजल तक का अभाव सृजित होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ ही दिन पहले प्रदेश को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था। गौरतलब है कि सावन महीना आ चुका है लेकिन इसके बावजूद मध्येश के 8 जिलों को मिलाकर कुल 46% ही रोपाई हो सकी है और उसमें भी पानी का अभाव बरकरार रहने से रोपी हुई जमीन से भी अच्छी फसल आ पाना मुश्किल है। बीते सावन 9 गते दुर्घटनाग्रस्त हुए सौर्य एयरलाइंस के 9MECRJ200 कॉलसाइन विमान संबंधी जांच के लिए गठित दुर्घटना जांच आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की है। आज मंत्रालय में एक कार्यक्रम के बीच आयोग के अध्यक्ष रतीश चंद्र लाल सुमन ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे को रिपोर्ट हस्तांतरित की। मौके पर मंत्री पांडे ने रिपोर्ट को क्रियान्वित करने की प्रतिबद्धता जताई। आयोग की रिपोर्ट पेश होते ही मंत्रालय ने इसे अपने वेबसाइट पर साझा कर दिया है। बता दें कि मरम्मत के लिए त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से पोखरा के लिए उड़ा सौर्य एयरलाइंस का विमान धावन मार्ग के पास से दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल और चीन के बीच की मित्रता को नए स्तर तक विस्तृत करने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधों को और आगे बढ़ाने के मामले में नेपाल सरकार की तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। नेपाल और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित नेपाल चीन सांस्कृतिक शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने यह बात कही। कहा कि नेपाल और चीन दोनों पुराने और ऐतिहासिक देश हैं तथा कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आपसी सांस्कृतिक संबंधों को विस्तारित करने के लिए एक सशक्त संदेश देता है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि भाषा भाषी की विविधता ने नेपाल की पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेपाल लोकतांत्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ के 28वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज कांग्रेस मुख्यालय सानेपा में आयोजित कार्यक्रम में सभापति देउवा ने यह बात कही। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा पर्यटन समिति की बैठक में हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2081 संशोधन प्रस्ताव के विषय में संशोधन आकांक्षियों के साथ विचार विमर्श हुआ। आज सिंह दरबार में हुई समिति की बैठक में सांसदों ने हवाई सुरक्षा में प्राथमिकता देने, अवैध हवाई कारोबार तथा सोने की तस्करी रोकने के लिए कड़ी नीति अपनाने, यात्री मैत्री सेवा, डिजिटल प्रणाली का विकास और आधुनिक उड़ान प्रणाली विकसित करने की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि देश में शांति और सुरक्षा की स्थिति स्थिर है। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत संघीयता सशक्तिकरण एवं राष्ट्रीय हित समिति की आज की बैठक में मंत्री लेखक ने कहा कि सरकार की पहली जिम्मेदारी देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है और वर्तमान में ये स्थिति अनुकूल है। गृहमंत्री ने यह भी बताया कि सड़क दुर्घटनाएं, नशीली दवाओं की लत और आत्महत्या जैसे मुद्दे सुरक्षा चुनौतियों के रूप में उभर रहे हैं। नेपाल पुलिस प्रमुख दीपक थापा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, जिसमें सबसे अधिक मौतें मध्य प्रदेश में और सबसे कम कर्णाली प्रदेश में हो रही हैं। सशस्त्र पुलिस प्रमुख राजू अरियाल ने बताया कि सशस्त्र पुलिस सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने और समुदाय के साथ संबंध मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। नेपाल चीन सीमा पर स्थित रसुआ गढ़ी में बीते आषाढ़ 24 को आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन में बह गए मितेरी पुल के स्थान पर अब बेली ब्रिज निर्माण करने की तैयारी हो रही है। सिंह दरबार स्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय में मंत्री देवेंद्र दहाल और नेपाल के लिए चीनी राजदूत चेन सोंग के बीच हुई भेंट में राजदूत चेन ने दशहरा से पूर्व ही मितेरी पुल की जगह बेली ब्रिज रखने की बात कही। ये जानकारी मंत्रालय के सचिव केशव कुमार शर्मा ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 5 मौतें नालंदा में हुई, वैशाली में 4, बांका और पटना में 2-2 लोगों की जानें चली गई। साथ ही यह भी बता दें कि पटना में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स SOHR के मुताबिक दक्षिण सीरिया में हाल ही में हुई हिंसा में 594 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते रविवार से शुरू हुई इस हिंसा में अत्यधिक क्रूरता देखी गई है। SOHR ने गुरुवार शाम को कहा है कि इस हिंसा में द्रूज समुदाय के 300 लोगों की जान गई है। इनमें 146 लड़ाके और 154 आम नागरिक हैं। एसओएचआर के मुताबिक 154 नागरिकों में से 83 लोगों को सरकारी बलों ने बिना किसी मुकदमे के तुरंत मार डाला। संगठन ने बताया है कि 18 बद्दू लड़ाकों और 257 सरकारी कर्मियों को मार डाला गया। द्रुज लड़ाकों ने बद्दू समुदाय से आने वाले 3 नागरिकों को बिना किसी मुकदमे के मार दिया। इसके अलावा अन्य 15 सरकारी कर्मी इसराइली हवाई हमले में मारे गए हैं। इसराइल ने कहा है कि यह हमला उसने द्रुज समुदाय की रक्षा के लिए किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधान महाधिवेशन में प्रस्तुत होने वाले प्रतिवेदनों पर नेकपा एमाले के पॉलिट ब्यूरो में विमर्श हुआ शुरू। काठमांडू के कलंकी महाराजगंज चक्रपथ सड़क खंड विस्तार का काम आगे बढ़ा है। भौतिक पूर्वाधार मंत्री दाहाल ने दी जानकारी। और भारतीय राज्य बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 17 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।